प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। हमें आशा है कि आप निरंतर इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पा रहे हैं और प्रभु में विकसित होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से पत्रस की प्रथम पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इसके दूसरे अध्याय के 1 से 3 पदों पर मनन किया और हमने सीखा कि जब एक विश्वासी जन प्रभु की कृपा का स्वाद चख लेता है तो उसे सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट और पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष तथा हर प्रकार की निंदा को अपने जीवन से दूर रखकर नवजात शिशु के समान परमेश्वर के वचन रूपी शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहना चाहिए। इसी से उसका आत्मिक विकास संभव है। मसीही परिपक्वता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन से तृप्त रहें। अपरिपक्व मसीही जीवन उदासीनता का जीवन है, शिथिल जीवन, किंतु शैतान के लिए क्रियाशील जीवन है। हमें वह जीवन व्यतीत करना है जो हमारे उद्धार को प्रमाणित करे और परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण करने में सहायक हो। आपको स्मरण रहे, जब हम आत्मिक रूप से शिथिल पड़ते हैं तो हमारा जीवन शैतान के लिए उपयोगी हो जाता है और हम शैतान के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे जीवन की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपने उद्धार को प्रमाणित करते रहें और परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करते रहें। हमारा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता अपने वचन से हमें कौन सा नवीन सत्य सिखाना चाहते हैं और हमारे जीवन के विकास के लिए हमें क्या बताना चाहते हैं। किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे, हम प्रार्थना करें। हे अति सामर्थी, जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, आप जो हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी परमेश्वर हैं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इन क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, जो कुछ हमने सीखा है उसे स्मरण करने में हमारी सहायता करें और आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में अपने सत्य को हम पर प्रकट करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और हमारी सहायता करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त आत्मिक, शारीरिक व मानसिक समस्याओं को प्रभु आप हमसे दूर करें, ताकि हम पूर्ण शांति और आनंद के साथ आपके वचन पर ध्यान कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो मित्र, हमारे साथ देखिए पत्रस की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, 4 पद से लेकर 8 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि आपके पास बाइबल की प्रति नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट कीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा है, अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और बहुमूल्य अर्थात मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूं, जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन ना करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए थे। मैंने आपके समक्ष 8 पद तक पढ़ा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें, आमीन। 4 पद में हमने पढ़ा, अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। मित्र, ये जीवित पत्थर कौन है? ये जीवित पत्थर मसीह यीशु हैं। हम बैतलहम के शिशु के समीप नहीं, जी हां मित्र, हम बैतलहम के शिशु के समीप नहीं आते, हम जीवित पत्थर के पास आते हैं। पतरस के स्वीकरण अर्थात इकरार के पश्चात, अर्थात जिस समय पतरस ने यह स्वीकार किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 18वें पद में ये कथन पाया जाता है। शमौन पतरस यहां इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह जीवित पत्थर मसीह यीशु हैं, मैं नहीं हूं। वो जीवित पत्थर मसीह यीशु हैं, मैं नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं के संदर्भ में पत्थर का प्रयोग करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 42 तथा 44वें पदों में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया वही कोने का पत्थर बन गया, ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो उसका फल लाए। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, परंतु जिस किसी पत्थर पर यह गिरेगा उसे पीसकर धूल बना डालेगा। इसी प्रकार से भजन 118 में 118 को उद्धृत करते हुए प्रेरित पत्रस ये स्पष्ट करते हैं कि यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे मित्र, पत्रस नहीं वरन प्रभु यीशु उस नींव का पत्थर है, हमें इस बात को समझना है। यहां हमारा विशेष बल इस बात पर है कि प्रेरित पत्रस नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह उस नींव का पत्थर है जिस पर कलीसिया की बुनियाद अर्थात उसकी नींव रखी गई है। प्रेरित पौलुस बताते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वो नींव है यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 11वें पद में हम इस विषय में पढ़ते हैं, अब जब आप एक पापी के रूप में मसीह यीशु के चरणों में गिर जाते हैं, आपका हृदय चकनाचूर हो जाता है और इस टूटी हुई दशा में वह पत्थर आपके लिए नींव बन जाता है और यही आपकी मुक्ति है। अब यदि आप उस पत्थर को ठुकरा देते हैं तो आप इस पत्थर के द्वारा नहीं तोड़े जाते। दानियल नबी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न का भेद बताते हुए कहता है कि तब एक पत्थर बिना हाथ लगाए कटकर उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर गिरा और उन्हें पीस डाला। दानियल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 34वां पद। मेरे मित्र, ये न्याय का पत्थर है। जिस पत्थर की यहां चर्चा की जा रही है वह न्याय का पत्थर है जो इस पृथ्वी को चकनाचूर करने के लिए आएगा। ये पत्थर मसीह यीशु का प्रतीक है और प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए न्याय का पत्थर है। जो आज इस पत्थर पर गिरकर स्वयं टूट जाता है वह न्याय के दिन इस पत्थर के गिरने से चकनाचूर होने से बच जाएगा, अर्थात न्याय के दिन वह इस पत्थर के द्वारा चकनाचूर नहीं किया जाएगा। किंतु जो आज इस पत्थर को ठुकराता है उस पर न्याय के दिन ये पत्थर गिरकर उसे चकनाचूर कर डालेगा। जो आज स्वयं को इस पत्थर के सामने चकनाचूर नहीं करता वो न्याय के दिन चकनाचूर किया जाएगा। ये पत्थर उस पर गिरकर उसे चकनाचूर कर डालेगा। यही मसीह यीशु का एक भिन्न रूप है हमारे सामने। ये ऐसा रूप है जिसके ऊपर हमने अभी तक विचार नहीं किया है। हम प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में, एक बड़े दयनीय व्यक्ति के रूप में, एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में क्रूस पर लटका हुआ देखते हैं, किंतु यहां प्रेरित पत्रस हमें प्रभु यीशु मसीह के एक भिन्न रूप से परिचित कराते हैं। एक ऐसा पत्थर जो न्याय का पत्थर है। और अब अग्रिम पदों में कुछ अन्य अद्भुत बातें हमारे सामने आती हैं। सो पांचवें पद को देखिए, पत्रस कहते हैं कि परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अब पत्रस कहते हैं कि तुम जीवित पत्थरों के समान, तुम भी जीवित पत्थरों के समान, इसका तात्पर्य है कि तुम भी पत्थर। श्रोता, हम जीवित पत्थर किस प्रकार हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम जीवित पत्थर हैं तो किस प्रकार हैं? पहला पत्रस उसके प्रथम अध्याय के 23वें पद के अनुसार देखिए यहां किस प्रकार से बताया गया है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वें पद, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जीवित पत्थर किस प्रकार हैं। नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने के कारण जीवित पत्थर हैं। तुम जीवित पत्थर के समान आत्मिक भवन बनते जाते हो। जब पत्रस ने प्रभु को स्वीकार किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु ने पत्रस से कहा कि तू पत्रस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मित्रवर, पत्रस का अर्थ है चट्टान, और प्रभु यीशु मसीह पत्रस को बता रहे हैं कि तू पत्थर का एक छोटा टुकड़ा है, किंतु मैं इस नींव के पत्थर पर जो स्वयं मसीह है अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस ने सत्य को समझा, उसने समझ लिया कि मैं एक साधारण पत्थर हूं, तुम एक साधारण पत्थर हो, प्रत्येक विश्वासी एक छोटा पत्थर है। इन सब से मिलकर परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण होता जाता है, और जब हम नया जन्म पाकर परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें परमेश्वर के भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। स्मरण रहे, जिस परिस्थिति में यह बातें कही गई हैं, वहां भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। जी हां मित्र, ये परिस्थिति ऐसी ही है। उस समय भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग होता था, ईंटों का नहीं, और इसलिए यहां पर पत्थर की तुलना जीवित विश्वासियों से की गई है। प्रेरित पौलुस भी इस विषय में इफिसियों की कलीसिया को समझाते हुए लिखते हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसके 19 से 22 पदों में वो हमको बताते हैं, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो, और प्रेरितों तथा भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। सो मेरे मित्र, आज परमेश्वर पिता एक भवन बना रहे हैं। ये जीवित भवन है, और ये भवन परमेश्वर की कलीसिया है, और इसी नींव का पत्थर, इसकी नींव का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। फिर यहां पर हम पढ़ते हैं पुरोहितों का पवित्र समाज। पत्रस कहते हैं कि तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पुरोहितों का पवित्र समाज, इसका क्या तात्पर्य है? मित्र, एक अन्य महत्वपूर्ण व अद्भुत चित्र ये पत्री हमको दर्शाती है, और वो है पवित्र पुरोहितों का समाज। प्रत्येक विश्वासी जीवित पत्थर है, प्रत्येक विश्वासी पुरोहितों का समाज है, वो पुरोहित है। पुरोहित को ऐसा बलिदान चढ़ाना है जो परमेश्वर को मसीह यीशु में ग्रहण योग्य हो। जब आप स्वयं को परमेश्वर के लिए अर्पित करते हैं, यही आपका आत्मिक बलिदान है। जी हां मित्र, जब आप अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, अपना जीवन उनको सौंप देते हैं, यही है आपका आत्मिक बलिदान। तब छठे पद में हम देखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूं, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश ना होगा। ये एक उदाहरण है, जो यशायाह नबी की पुस्तक के 28वें अध्याय के 16वें पद से लिया गया है, जहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं सियोन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, हां नींव के लिए एक बहुमूल्य कोने का पत्थर दृढ़ता से रखने पर हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह ना डगमगाएगा। ये यशायाह नबी की पुस्तक का उद्धरण है। मेरे मित्र, ये पत्थर मसीह यीशु का प्रतीक है, और पवित्र बाइबल इस तथ्य को पूर्णता स्पष्ट करती है। तब 7वें पद में प्रेरित बताते हैं, अतः तुम विश्वासियों के लिए एक पत्थर बहुमूल्य है। परंतु अविश्वासियों के लिए, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। मित्र, इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, और दूसरे शब्दों में यूं कहना चाहिए कि जो विश्वास करता है उसके लिए मसीह यीशु बहुमूल्य हैं। ये बड़ी रुचिकर बात है कि शमौन पत्रस जैसा कठोर, रूखा व कड़ा मछुआरा यहां बहुमूल्य शब्द का प्रयोग कर रहा है। पत्रस तथा प्रतीक उस व्यक्ति के लिए जिसने मसीह यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा परमेश्वर के महान उद्धार का अनुभव किया है, उनके लिए मसीह यीशु बहुमूल्य हैं। मेरे मित्र, आपके लिए मसीह यीशु क्या हैं? क्या आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या हैं। विश्वासियों के लिए तो मसीह यीशु एक बहुमूल्य पत्थर हैं, किंतु अविश्वासियों के लिए वह ठुकराए हुए पत्थर हैं। अब यहां पर कैसा विरोधाभास है, विश्वासियों के लिए बहुमूल्य हैं और अविश्वासियों के लिए ठुकराए हुए पत्थर हैं। तब 8वां पद हमको बताता है कि और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन ना करने के द्वारा वे ठोकर खाते हैं, और इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए थे। श्रोता, अविश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ठुकराए हुए पत्थर हैं, साथ ही ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान है। अब ये पवित्र बाइबल का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहां पत्रस ने भजन संहिता 118 के दूसरे पद का उल्लेख किया है, और इस पद का संबंध उस समय के भवन निर्माण की परंपरा से है, और ये परंपरा हमें राजा सुलेमान के राज्यकाल की ओर ले जाती है, जबकि उसने परमेश्वर के भवन का निर्माण कराया था। पहला राजा उसके 6 अध्याय के 7वें पद में हम वास्तविक भवन निर्माण के विषय में पढ़ते हैं। हमें इस वास्तविक भवन निर्माण के विषय में बताया गया है। यहां बताया गया है कि और भवन बनाते समय वह ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो खदान में पहले से गढ़कर तैयार किए गए थे, और जब भवन बनाया जा रहा था तथा हथौड़े, वसूली व लोहे के किसी भी प्रकार के औजार की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। अब हम इस पद में ये देखते हैं कि जब भवन निर्माण हो रहा था तो पत्थर को खदानों ही से उचित माप में बनाकर लाया गया, इसलिए वहां हथौड़े वसूली की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती थी। इस प्रकार की सारी ध्वनि, सारी आवाजें खदानों में ही सुनाई दी जाती थी जहां पत्थरों का निर्माण हो रहा था। मेरे मित्र, वे केवल अपने स्थान पर रख दिए गए, इसलिए कोई ध्वनि नहीं थी, हथौड़े वसूली की कोई आवाज नहीं थी, और परमेश्वर के भवन का निर्माण बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, क्योंकि पत्थरों को पहले ही से तैयार कर लिया गया था। वहां परंपरा ऐसी थी कि भवन निर्माण योजना के प्रारंभ में एक बड़ा और सुंदर आकर्षक पत्थर खदान से लाया गया, किंतु मिस्त्री उसे कहीं लगा ना सके, परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे उठाकर एक और रख दिया। ये पत्थर रास्ते में डाल दिया गया, क्योंकि अंततः उन्होंने उसे पर्वत के किनारे पर इसलिए डाल दिया था कि दूसरे पत्थरों के लिए स्थान बना दिया जा सके। और अंत में वे इस पत्थर के विषय में भूल भी गए थे कि हमारे पास कोई ऐसा पत्थर भी है जो कोने के सिरे का पत्थर है। अंततः जब सभी पत्थर अपने अपने स्थान पर लगा दिए गए, तब उन्होंने खदान के मालिक को सूचना भेजी कि अब कोने के सिरे का पत्थर भेज दिया जाए। भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल कोने का पत्थर शेष रह गया है। खदान के मालिक ने उत्तर में यह सूचना भेजी कि हम आरंभ ही में उस कोने के सिरे के पत्थर को भेज चुके हैं। तब मिस्त्रियों को स्मरण आया कि जिस पत्थर को हमने उठाकर पर्वत के एक ओर फेंक दिया है, एक ओर रख दिया है, वही तो वो पत्थर है। इसलिए अत्यंत कठिनाई और परिश्रम के पश्चात वे पुनः उसे पर्वत पर लाए और उसे उसके स्थान पर लगा दिया। इस प्रकार से भवन निर्माण पूर्ण हो गया। मेरे मित्र, यदि ये परंपरा ठीक है तो इसके द्वारा इस पद की उचित व्याख्या की जा सकती है कि प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे के पत्थर हैं और जिस पर भवन टिका हुआ है, जो भवन की सुंदरता है, वो विश्वासी के लिए कोने के सिरे का पत्थर है, किंतु अविश्वासी के लिए वो ठोकर खाने का पत्थर है, ठोकर खाने की चट्टान है। प्रश्न यह है कि वह आपके लिए क्या है। अब इसी संदेश के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।